प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और आज के इस 20 जुलाई 2016 के afeis.com के इस डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं संतोष कुमार सिंह जो दिल्ली से हैं और विकास कुमार आप आरा बिहार से हैं। तो संतोष और विकास, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसके बाद मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देता हूं आलोक सिंह को जो मुंबई से हैं और उन्होंने मेल से सूचित किया है कि उनका सिलेक्शन आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए हुआ है और उनके इस सिलेक्शन में डेली ऑडियो गाइडेंस की भी भूमिका रही है। तो आलोक, इसके लिए आपको हम सभी की ओर से बहुत बहुत बधाइयां और आपके और भी अच्छे और बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर। पिछले एक दो दिनों से आपने देखा कि हम लोग सत्य पर बात कर रहे हैं, कर्म के सिद्धांत पर बात कर रहे हैं और सच पूछे तो कर्म का सिद्धांत ही अपने आप में सत्य का सिद्धांत है, या यूं कह ले कि सत्य का सिद्धांत ही कर्म का सिद्धांत है। तो मुझे लगा कि मुझे अब थोड़े से ऐसे लोगों के बारे में भी बात करनी चाहिए जिन्होंने सत्य की खातिर, सत्य के लिए अपने जीवन तक की परवाह नहीं की। मतलब उन्होंने अपने सत्य के प्रति कोई संदेह नहीं किया, उन्होंने अपने सत्य के बारे में कोई बदलाव नहीं किया और जिसके कारण उन्होंने मृत्यु की दंड की सजा पाई और उस मृत्यु दंड की सजा को उन्होंने बिल्कुल अपने सत्य की तरह ही गले से लगाया। फ्रेंड्स, ऐसे ही एक नाम है सुकरात, उनका नाम आपने सुना होगा, जो एथेंस, जो आज का ग्रीक है, यूनान है, वहां के रहने वाले थे और 399 बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज अगर उसको हम 400 मान लें तो अभी 2116 है, तो आप कह लीजिए कि 2515 साल पहले उन पर एक मुकदमा चलाया गया था और उन पर जो अभियोग लगाया गया था वह अभियोग था कि सुकरात नास्तिक हैं, वह हमारे अभी के जो देवता हैं, देवी देवता हैं, उनके प्रति आस्था नहीं रखते हैं और वे अपकुतर्क के द्वारा जो नौजवान हैं उनको भ्रष्ट कर रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं। मित्रों, सुकरात के बारे में बहुत फेमस है कि वो बहुत ही गजब किस्म के तार्किक व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल पर्सन थे और उनके इस अभियोग को आधार बनाकर उन पर मुकदमा चलाया गया और जो मुकदमा दायर करने वाले लोग थे, अब आप देखिए कि उसमें कौन कौन लोग थे। उसमें तो एक पॉलिटिशियन थे, उनका नाम था अन्यूतस, ये आपको कभी पढ़ने को मिलेगा और मैं जानबूझ करके इनके नामों का उल्लेख कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आपके कम से कम नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए, है ना, कि चीजों के बारे में एक तथ्यात्मक जानकारी भी थोड़ी सी होनी चाहिए। उसमें एक पॉलिटिशियन थे अन्यूतस, एक पोएट थे, कवि थे, उनका नाम था मलेतस और एक भाषण वगैरह इसी तरह के उपदेश दिया करते थे, उनका नाम था लाइकॉन। ये तीन लोग थे जिन्होंने इन पर महाभियोग लगाया था और उसकी सुनवाई हुई थी और अंततः उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। तो दोस्तों, मृत्युदंड देने से पहले सुकरात को यह मौका दिया गया था कि वो अपनी सफाई पेश करें। तो न्यायालय में, जो उस समय जो न्यायालय हुआ करते थे, उसमें तीन बार सुकरात ने अपनी सफाई दी मुकदमे के बारे में और उस सफाई के दौरान प्लेटो, जो उनके शिष्य थे और खुद जो बाद में एक बहुत बड़े दार्शनिक बने प्लेटो, वो वहां प्रेजेंट थे, मतलब उपस्थित रहते थे, तो उन्होंने वो पूरा का पूरा जो वक्तव्य था सुकरात का वो सुना था और बाद में फिर प्लेटो ने सुकरात के उस पूरे के पूरे वक्तव्य को लिखा, जो भी उन्होंने कहा वो लिखा। मित्रों उस समय कोई और तो साधन था नहीं, अगर प्लेटो वहां उपस्थित नहीं होते और प्लेटो ने ये चीजें नहीं लिखी होती तो हम सुकरात ने क्या कहा इसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते थे। लेकिन आज सौभाग्य है ये मानव जी मतलब मानवता का कह लीजिए या मानव समुदाय का कि वो हमारे पास लिखित रूप में मौजूद है। फ्रेंड्स ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है जो प्लेटो ने लिखा है ये बहुत ही गजब का है। मतलब आप अगर इस पूरे हिस्से को पढ़ें तो मतलब दंग रह जाएंगे कि सच में सुकरात के अंदर कितनी जबरदस्त अपने विश्वास अपनी आस्था और अपने विचारों के प्रति दृढ़ता थी और वो जो अपनी बात रख रहे हैं वो कितने जबरदस्त तार्किक रूप से रख रहे हैं, मतलब गजब की तार्किकता। अच्छे अच्छे वकील आज के जो पढ़े लिखे हैं शायद वह भी जब ये सारे तर्क इन सारे तर्कों को सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मतलब उनकी जो मानसिक संरचना थी उसके बारे में सच में पूछे तो एक विस्मय बोध होता है, आश्चर्य से भर जाता है व्यक्ति। तो मित्रों उन्होंने जो वक्तव्य दिए थे उसके कुछ कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये वे अंश हैं जिनका संबंध सत्य से है, कर्म के सिद्धांत से है जिनकी चर्चा मैं इससे पहले के लाइफ मैनेजमेंट में कर चुका हूं, और साथ ही अंतःकरण से भी है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। मैंने जानबूझ करके इस अंतःकरण और अंतरात्मा वाले हिस्से को चुना है, इसलिए चुना है फ्रेंड्स क्योंकि यह आपके जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर में है भी और इस पर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इस बीच मुझे कुछ मेल मिले हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने ये अपनी बात रखी है कि सर फोर्थ पेपर के बारे में भी कुछ बताया जाए। वैसे मैं ये मान करके चलता हूं कि मेरा ये जो लाइफ मैनेजमेंट वाला पोर्शन है ये फोर्थ पेपर के लिए और यहां तक कि ऐसे के लिए आपकी प्रिपरेशन कराने में काफी कुछ मदद कर रहा होगा। मैं इसी उद्देश्य से इसको थोड़ा अलग तरीके से आपके हिसाब से प्रस्तुत भी करता हूं। तो उसी उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके मैंने सुकरात के न्यायालय में दिए गए इन वक्तव्यों के कुछ ऐसे ही अंश चुने हैं। तो मित्रों अब मैं उन अंशों को पढ़कर सुना रहा हूं जो प्लेटो ने लिखे हैं, राइट। तो ये उसका रेफरेंस है, इसमें से जो बेहतर लगे आप उन्हें नोट भी कर सकते हैं, ये आपके फोर्थ पेपर में काम भी आएगा, आप कोट कर सकते हैं जहां भी उनकी जरूरत महसूस होती हो। दोस्तों उन्होंने शुरुआत इस बात से की है कि जब सुकरात पर आरोप लगाए गए तो उन्होंने भड़कते हुए मतलब थोड़ी सी नाराजगी में ही अपना एक वक्तव्य दिया और बड़ा खूबसूरत वक्तव्य था, इसे कर्म के सिद्धांत से जोड़ करके देखिएगा। उन्होंने एक छोटा सा वाक्य कहा था कि अपरीक्षित जीवन जीने के योग्य नहीं होता, अपरीक्षित जीवन जीने के योग्य नहीं होता। मित्रों जरा इस पर आप विचार कीजिएगा, मतलब एक ऐसा जीवन जिसकी कभी परीक्षा ही नहीं हुई, और परीक्षा नहीं हुई हो का मतलब ये नहीं कि जिस तरह की हम आज की परीक्षा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम जीवन में स्वीकार करते हैं, जो कुछ भी हमारे विचार हैं या जो कुछ भी हम करते हैं, कम से कम उनका उनको इवेलुएट भी तो करें, उनका परीक्षण भी तो करें कि या बस ऐसे ही हम चीजों को करते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं, स्वीकार करते चले जा रहे हैं और वही हमारे जीवन का उद्देश्य बन गया है, और सच पूछिए तो वही एक प्रकार से हमारे जीवन के विचार भी बन गए हैं, जीवन की धारणाएं भी बन गई हैं, और उन्हीं धारणाओं पर फिर हम अपने पूरे जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहां शब्द प्रयोग में लाया है दोस्तों कि अपरीक्षित जीवन, याद रखिए अपरीक्षित जीवन, यानी कि हमें हर चीज का परीक्षण करना चाहिए। मित्रों आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ समय के बाद आप उसका परीक्षण तो कीजिए कि आपकी तैयारी सही है या नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ समय के बाद उसका परीक्षण तो कीजिए कि बिजनेस ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गलतियां हो रही हैं तो कहां हो रही हैं, क्या सुधार किया जा सकता है या अगर सुधार करने की जरूरत नहीं है तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। यहां तक कि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं का ये मतलब थोड़ी है कि हम जा रहे हैं और हमें सैलरी मिल रही है। अगर आपको अपने व्यक्तिगत कैरियर की चिंता है तो अपनी नौकरी का भी परीक्षण कीजिए कि मुझे और क्या इसमें शामिल करना चाहिए ताकि मेरी जो इमेज है हायर अथॉरिटी के दिमाग में बहुत अच्छी बने, मुझे और ज्यादा वो जिम्मेदारियां देने लायक समझें। तो ये परीक्षित जीवन है। तो सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि जो अपरीक्षित जीवन है वह जीने योग्य ही नहीं है। इस वाक्य का विश्लेषण कीजिए मित्रों। मैंने जानबूझकर के यहां विश्लेषण इसका किया है क्योंकि आपके फोर्थ पेपर में कुछ इस तरीके की चीजें भी पूछ ली जाती। मान लीजिए यही वक्तव्य दे दिया गया, दिया जाता है, एक प्रश्न दो साल से पूछा जा रहा है कि जिसमें एक सेंटेंस दे दिए जाते हैं और फिर कहते हैं कि आप इसकी व्याख्या कीजिए 100-100 शब्दों में। देखिए दोस्तों, इसके बाद वो आगे क्या कहते हैं सुकरात। बीच बीच के टुकड़े हैं इसलिए आपको थोड़ा सा कहीं डिलिंकिंग सा भी महसूस होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अभी अपने शत्रु के हाथों मार डाला जाऊं तो कोई बात नहीं, किंतु मुझे यहां पड़े पड़े संसार के उपहास का पात्र बनना और पृथ्वी का भार बने रहना स्वीकार नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मतलब हिम्मत देखिए, दृढ़ता देखिए, सुकरात की आंतरिक दृढ़ता देखिए कि मैं अभी अपने शत्रु के हाथों मार डाला जाऊं तो कोई बात नहीं, किंतु मुझे यहां पड़े पड़े संसार के उपहास का पात्र बनना और पृथ्वी का भार बने रहना स्वीकार नहीं है। मनुष्य जिस भी मोर्चे पर हो, चाहे उस स्थान को उसने खुद चुना हो या उसके सेनापति ने उसे वहां नियुक्त किया हो, उसे खतरे के समय वहीं टिके रहना चाहिए। अपयश के अतिरिक्त उसे मृत्यु या अन्य किसी कष्ट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हे एथेंस वासियों, यही सत्य वचन है। मित्रों, इसको बार बार सुनिएगा और खुद एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा है। जो आपको डरना है, भयभीत जिससे होना है, वो सिर्फ एक चीज है और वो है अपयस। अपयस न मिले, अदरवाइज किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि मृत्यु से भी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि आप जिस स्थान पर हैं, चाहे उसका चयन आपने खुद किया हो या किसी दूसरे ने आपको उस स्थान पर रख दिया हो, हमारे जिंदगी में दो ही स्थितियां होती हैं। या तो हम अपने लिए खुद उस स्थान का चुनाव करते हैं, उस काम का चुनाव करते हैं, उस उद्देश्य का चुनाव करते हैं, या फिर कोई दूसरा हमारे बिहाव पर उसका चुनाव कर देता है। जैसे मैं नौकरी कर रहा हूं तो बट नेचुरली कि नौकरी का चुनाव मैंने किया था, लेकिन अब मैं किस स्थान पर काम करूंगा ये चुनाव मैं नहीं कर सकता, ये चुनाव मेरा बॉस करेगा, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं वो करेगा, ये उसकी अथॉरिटी है। और जब हम इन स्थितियों में हों तो चाहे कितनी भी स्थितियां खराब क्यों ना हो जाए, और यदि खतरे की स्थिति, तब तो हमें वहीं डटे रहना चाहिए, विशेषकर उस स्थिति में। सामान्य स्थिति में तो हर कोई रहता ही है, तो उसमें तारीफ की क्या बात है। तारीफ की बात तो तब है जब खतरे के समय आप वहां डटे हुए हों, बशर्ते कि वहां डटे रहने से अपयश न मिले, और यहां तक कि अगर मृत्यु का भी वर्ण करना पड़े तो आप वहां डटे रहिए। मित्रों, अब मैं एक अंतिम वक्तव्य उनका पढ़ रहा हूं जो थोड़ा सा लंबा है, और इसके बाद साथ ही मैं अब उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर मैं इसे खत्म करूंगा, और आप लोग चाहेंगे तो फिर मैं और कुछ ऐसे वक्तव्य आपको पढ़कर सुना सकता हूं। फिर उन्होंने अपने उसी न्यायालय में वो क्या कह रहे हैं सुनिए, बहुत ही अंदर से हिला देने वाला वक्तव्य है। दोस्तों, कि एथेंस वासियों, मैं आपका सम्मान करता हूं, मुझे आपसे स्नेह है, परंतु मैं आपके बजाय ईश्वर की आज्ञा का ही पालन करूंगा, और जब तक मुझ में शक्ति है, मेरी सांस है, मैं दर्शन के अभ्यास और इसकी शिक्षा देने से बाज नहीं आऊंगा। जो भी व्यक्ति मुझे मिलेगा मैं उससे अपने ढंग से कहूंगा, क्या कहूंगा, वो आगे कह रहे हैं, अरे वो मेरे मित्र विशाल महान तथा ज्ञानी एथेंस के नागरिक, तुम अधिकाधिक धन सम्मान और यश के ढेर लगा रहे हो और ज्ञान सत्य तथा आत्मा की उन्नति का ध्यान नहीं रखते, इस बात पर तुम्हें लज्जा भी नहीं आती। इस आत्मा के विषय में तुम न कभी सोचते हो न इसकी चिंता ही करते हो। ये अपने देश के नागरिकों को दोष देते हुए उन्होंने ये बात कही थी। तो मित्रों, अब इसका विश्लेषण, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या आप खुद करें, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा महसूस करेंगे, जिस शब्द का उल्लेख मैं बार बार कभी कभी कर दिया करता हूं आपके सामने, तब आप सच पूछे तो उनके इस वक्तव्य की जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, जो ताप है, जो विस्फोटक क्षमता है, सच पूछिए तो आप उसको समझ सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। मित्रों, कल के AIR न्यूज में ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी जिसको लेकर हम सब विस्तार के साथ चर्चा करें। दो खबरें थी जिनको हम मेंशन कर सकते हैं। पहला तो आपने सुना, जो पहली ही शायद खबर थी, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी के एक वक्तव्य पर कहा है कि या तो वो इसके लिए माफी मांगे, अदरवाइज फिर जो अवमानना का केस होगा, डिफेमेशन का जो केस होता है, उसके लिए वो तैयार रहें, फिर उसका सामना करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि खासकर जो अवमानना का मामला है, किसी की मान हानि किए जाने का जो मामला होता है, ये लगातार विवादों में बना रहता है। और अगर आपको एक डेढ़ महीने पहले की कुछ घटनाएं याद हों, मेरी क्लिपिंग्स याद हों, तो मैंने कुछ क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि नहीं, इससे रिलेटेड, अवमानना के कानून से रिलेटेड जो धारा है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने मांग की थी कि इसका गलत उपयोग हो रहा है और हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तरीके से बाधा भी डालती है, तो इसे खत्म ही कर दिया जाए, क्योंकि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच जाता है, किसी को अपमानजनक लग जाता है, किसी समुदाय को खराब लग जाता है, तो इससे, जबकि कहने वाले का आशय यह नहीं रहता, तो मतलब ये दलील दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया और कहा कि नहीं, जो अवमानना का जो क्लॉज है वो रहेगा ही, आप किसी को एज ए ग्रांटेड नहीं ले सकते कि उसके बारे में कुछ भी कहा जाए, और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके पास कोई उपचार ही न रह जाए कि अब वो क्या करे और चुपचाप सुनता रहे। क्योंकि मित्रों, ये तो है कि जो थोड़े से भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं समाज में, जिनकी एक छवि होती है, स्वाभाविक रूप से उनको अपनी छवि को बनाए और बचाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चूंकि वो सेलिब्रिटीज होते हैं, तो एक छोटा सा भी आरोप उनके अब तक के स्थापित छवि को धुंधला कर देगा, गंदा कर देगा, विकृत कर देगा, कुछ भी कर सकता है। तो कम से कम उनके पास भी ये एक जस्टिस का मेजर तो होना ही चाहिए, एक उपाय तो होने ही चाहिए कि वो अपने उस छवि को, धूमिल होती हुई छवि को फिर से चमका सके, ठीक कर सके और समाज के सामने रख सके, क्योंकि वो खुद अगर अपने मुंह से कहते रहेंगे तो उस पर कौन यकीन करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ये इस घटना की बैकग्राउंड है। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया था कि जो गांधी जी की हत्या है वो राष्ट्रीय सेवम संघ RSS ने की थी। सच यह है कि जो हत्या की थी वो नाथुराम गोडसे ने की थी, न्यायालय द्वारा प्रमाणित हो चुका है, गोडसे ने स्वीकार भी किया कि हाँ मैंने की थी, और उसके सजा के बतौर सजा भी उन्हें उसकी मिल चुकी है, वो सारी चीजें प्रमाणित हैं। यहां देखिए, जो थोड़ा सा लिंक है वो ये है कि नाथुराम गोडसे RSS का मेंबर था। अब कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कि इसका मतलब यह नहीं है कि संस्था ने ऐसा किया। देखिए, एक व्यक्ति पता नहीं कितने संस्थाओं का सदस्य होता है, और अगर वो कोई भी कदम उठाता है, आपराधिक कदम या कोई भी, तो उसके लिए संस्था किस सीमा तक जिम्मेदार होगी, आप उसके लिए संस्था को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो इसका जो थ्रस्ट है वो यह है, इसीलिए RSS और नाथुराम गोडसे को जोड़ करके उन्होंने सीधे सीधे एक संस्था को इस बात पर ब्लेम कर दिया। और आपको मालूम ही है फ्रेंड्स की, खासकर एक इंडियन पॉलिटिक्स में, खासकर 1950 के बाद से लगातार ये डिबेट चलता रहता है कि एक पक्ष अपने को धर्मनिरपेक्ष कहता है, सेकुलर कहता है, और सेकुलर कहने वाला पक्ष दूसरे को घोर राष्ट्रवादी, उग्रवादी, तानाशाही और संस्कृतिवादी, हिंदूवादी, इस तरह के आरोप उस पर लगाता है। तो ऐसी स्थिति में, चूंकि गांधी जी की हत्या एक बहुत बड़ी घटना थी और पूरा का पूरा देश गांधी से बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही गहराई से, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, तो शायद एक पॉलिटिकल एक बेनिफिट लेने के लिए फिर संस्थाओं को जोड़ देने से उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है। तो इस तरह की अगर कोशिशें होती हैं तो संस्था बदनाम होती है। तो उसको लेकर के एक याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जजमेंट दिया है। न्यूज में आपने सुना कि कांग्रेस ने कह दिया है कि नहीं, राहुल गांधी जी इसके बारे में माफी नहीं मांगेंगे, वो कोर्ट केस का सामना करेंगे और वहां जो भी तथ्य हैं वो हम तथ्य प्रस्तुत करेंगे। तो उनके पास भी डेफिनेटली अपने कुछ तथ्य होंगे, वो चाहे न्यायालय के निर्णय में वो चीज मेंशन की गई हो या जो कुछ भी, वो अब केस चलेगा, देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर यह कि सिविल सर्विस के पॉइंट से ये एक तरीके से डिफेमेशन का जो अवमानना का जो मामला होता है उससे जुड़ा हुआ है, एक घटना के रूप में है, बस एक कंटेंट के रूप में है, उदाहरण के रूप में है। यदि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप मेंशन इस घटना को कर सकते हैं अगर वहां वह उपयुक्त बैठ रहा हो तो। दूसरी जो खबर थी दोस्तों वो दक्षिण चीन सागर को लेकर के थी। इस पर मैं काफी कुछ आपको आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर चुका हूं और मैं ये भी बता चुका हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस पर अच्छी तैयारी करनी चाहिए। आज भी मैं आपको दैनिक हिंदुस्तान का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो काफी अच्छा आर्टिकल इस पर लिखा गया है। देखा आपने कि फिलीपींस की घटना को लेकर के था। तो अब देखिए इस तरह की छोटी छोटी चीजें तो दक्षिण चीन सागर को लेकर के आती ही रहेंगी। यहां आपको ध्यान केवल इस बात का रखना है कि भारत की स्थिति, शक्ति इस क्षेत्र में, शक्ति संतुलन को लेकर के इन सब चीजों पर आपके नजर हो और उसी नजरिए से बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस पर बहुत ज्यादा आपको एक्सपर्टीज हासिल करने की जरूरत नहीं है। मित्रों तो न्यूज से तो इतनी ही है, अब मैं आता हूं न्यूज पेपर पर। फ्रेंड्स आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन एक दो क्लिपिंग्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिपिंग मान रहा हूं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का लिखा लेख है जो दैनिक जागरण में छपा है, उच्च शिक्षा का भावी पथ। मैं एक बार आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, बहुत पहले मैं ये बात कह चुका हूं लेकिन याद दिलाना चाहूंगा कि जो डॉक्टर भरत झुनझुनवाला के जहां भी आपको लेख मिले प्लीज आप उन्हें पढ़ें, इसलिए कि मैंने पाया है कि उनकी जो अप्रोच है, दो चीजें बड़ी तारीफ की हैं उनकी। नंबर एक कि उनकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही व्यावहारिक है और अपनी बात को भी ना वो बड़े व्यावहारिक तरीके से समझाते हैं। वो बहुत ऊंची ऊंची और बात नहीं करेंगे, जब मान लीजिए कि वो इकोनॉमिक्स पर लिखेंगे तो ये नहीं कि अर्थशास्त्री बनकर के वो लिखेंगे, वो बिल्कुल आपके और हमारे लोगों के लिए लिखते हैं बहुत ही सामान्य तरीके से और चीजों को बहुत अच्छे से समझा देते हैं। ये तो उनकी पहली तारीफ है। दूसरी तारीफ उनकी यह है कि वे अपने लेख में कुछ न कुछ एक नया आइडिया दे देते हैं, एक अच्छा सा आइडिया दे देते हैं। और याद रखिए कि नया और अच्छा आइडिया देना सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है। तो भरत झुनझुनवाले के लेख का, वाले जी का, ग्वाला जी का जो लेख है वो आपके लिए हमेशा उपयोगी होते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा कि आप उसकी क्लिप कटिंग्स भी अपने पास रख लें। तो मित्रों ये जो लेख है ये हायर एजुकेशन पर है और बहुत अच्छा लेख है, अभी मैं उनकी कुछ चीजें बताऊंगा। आप अगर अनसॉल्व्ड पेपर देखेंगे, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो मित्रों 2013 से अभी का पैटर्न शुरू हुआ है, 2015 और 2014 इन दोनों ही सालों में हायर एजुकेशन पर एक एक प्रश्न पूछा ही गया है। ये जनरल स्टडीज के पेपर नंबर 2 में होता है, हायर एजुकेशन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। मैं आपकी जानकारी के लिए, ताकि क्वेश्चंस का स्वरूप आपको पता चल सके किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अब वो क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं सन 2015 में जो पूछा गया है उसे ध्यान से सुनिएगा। भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है, क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का प्रवेश देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता की प्रोन्नति में सहायक होगा, चर्चा कीजिए। द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया रिक्वायर्स मेजर इंप्रूवमेंट्स टू मेक इट इंटरनेशनली कॉम्पिटेटिव। Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of higher and technical education in the country discuss. ये एक क्वेश्चन है. जब आप भरत झुनझुनवाला का ये लेख पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट वो उपाय सुझाते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, और उन उपायों के तौर पर उन्होंने जो आखिरी उपाय सुझाया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी है उसमें यही उपाय है. उन्होंने कहा है कि जो फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हमें अपने यहां आमंत्रित करना चाहिए, उससे कंपटीशन बढ़ेगा और भारत के भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने स्तर को सुधारेंगे. उसमें उन्होंने आईआईटी का भी नाम लिया, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन की भी बात कही है. तो आप देखेंगे कि सीधे सीधे इस आर्टिकल से आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाता है. हालांकि उन्होंने एक दो पॉइंट्स लिए हैं, आप अपनी तरफ से और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. राइट फ्रेंड्स, अब मैं आपको 2014 में जो प्रश्न पूछा गया, ये भी जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में ही है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड. अब इसे आप सुने. क्वेश्चन है, क्या आईआईटी / आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों को अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने की पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने में अधिक शैक्षिक स्वतंत्रता की और साथ ही छात्रों के चयन की विधाओं / कसौटियों के बारे में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? बढ़ती हुई चुनौतियों के प्रकाश में चर्चा कीजिए. अब देखिए, उसमें इन्होंने दो तीन चीजें पूछी हैं. वो तो यह कि अपनी स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखें, दूसरी बात उन्होंने की कि वो अपने पाठ्यक्रम खुद बनाएं, और फिर यह है कि वो अपने यहां किसको एडमिशन देंगे, जो प्रणाली होगी छात्रों को एडमिशन देने की वो इसके बारे में वो खुद निर्णय लें. ये जो तीन स्थितियां हैं, क्या इसको अलाउ किया जाना चाहिए? और ये जो पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखिए कि बढ़ती हुई चुनौतियों की, आज के जो चैलेंजेस हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं उन चैलेंजेस को ध्यान में रख करके आप इन तीनों बिंदुओं के बारे में अपने विचार बताइए कि क्या किया जाना चाहिए. आप देख रहे हैं दोस्तों कि एजुकेशन की बात हो रही है लेकिन उसमें कंटेंट की बात नहीं हो रही है. विशेषताएं बताइए, कारण बताइए, सब उपायों की बात हो रही है. और जो उपाय भी हैं आपको बिल्कुल वर्तमान संदर्भों के बारे में ही बताने हैं जो प्रैक्टिकली हो सकते हैं, लागू किए जा सकते हैं. मित्रों, इसी को अब इसी प्रश्न को मैं इंग्लिश में पढ़कर आपको सुना देता हूं. Should the premier institutions like IITs and IIMs be allowed to retain premier status, allowed more academic independence in designing course, and also decide mod / criteria of selection of student? Discuss in light of the growing challenges. ये दूसरा प्रश्न है. मित्रों, इसलिए मुझे लगता है कि जो हायर एजुकेशन का टॉपिक है वो आपके सिविल सर्विस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, और मुझे इस साल के लिए भी मुझे ये इक्वली इम्पॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल से जो हायर एजुकेशन है वो लगातार विवादों में रहा है, या यूं कह लें कि चर्चा में रहा है. चाहे किसी रिसर्च को लेकर के हो, चाहे स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था उस मामले को लेकर के हो, फिर जेएनयू में जो घटना घटी थी उस मामले को लेकर के हो, तो लगातार कुछ न कुछ ऐसा हायर एजुकेशन में होता रहा है कि वो चर्चा में रहा, और उस पर काफी कुछ लिखा भी गया है, काफी कुछ आर्टिकल्स भी आए हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी हुए हैं जो आपको उपलब्ध कराए गए हैं. तो इन्हीं संदर्भों में मुझे महसूस होता है कि इस साल भी हायर एजुकेशन एक टॉपिक हो सकता है, इसलिए आपकी तैयारी इस पर अच्छी होनी चाहिए. दोस्तों, जहां तक डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी के लेख का सवाल है, आप इसे पढ़ेंगे, ये हिंदी में है, कोई विशेष आपकी दिक्कत नहीं होगी. लेकिन इसमें इन्होंने जो उपाय सुझाए हैं, पहली तो समस्याएं बताई हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अगर स्किल इंडिया को सक्सेस होना है तो हायर एजुकेशन के बिना, अच्छे हायर एजुकेशन के बिना सक्सेस नहीं हो सकता. दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि 75-80 के बाद से जो हमारी हायर एजुकेशन है लगातार बेकार होती चली गई है. हायर एजुकेशन ही क्या, प्राइमरी एजुकेशन से ले लीजिए, वो लगातार गिरती चली गई है, और राजनीतिक दखलंदाजी बहुत होने लगी है, खासकर वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के। पहले तो जो एकेडमिक पर्सन्स होते थे वाइस चांसलर बनाए जाते थे, फिर अब है कि वो ऑफिसर्स बनाए जाने लगेंगे, बाद दूसरे लोग बनाए जानेंगे जिनकी पॉलिटिकल बैकिंग है, वही केवल वाइस चांसलर बनाए जाते हैं, फिर उनका पढ़ने लिखने से कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता। प्रोफेसर्स के अपनी यूनियन बन गए हैं, प्रोफेसर्स भी अब पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। तो इस तरह की जो कुछ समस्याएं हैं उनको उन्होंने मेंशन किया है। फिर उन्होंने दो तीन उपाय सुझाए हैं, वो आप इसमें देख लेंगे। एक उपाय उन्होंने अच्छा सुझाया है जो अमेरिका ने भी अपने यहां लागू किया है कि जो प्रोफेसर्स हैं वो खासकर ठेके पर रखे जाए, मतलब 5 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर। ठेका शब्द अच्छा नहीं, इसमें उन्होंने ठेका शब्द ही यूज किया, तो ट्रांसलेटेड होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाए 5-5 साल के, और इसके बाद उनका मूल्यांकन हो, मूल्यांकन विद्यार्थी करें, और फिर 5 साल के लिए उनका बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका में ज्यादातर यही पैटर्न है। दूसरा उन्होंने ये भी उपाय सुझाया है फ्रेंड्स की जो ऑनलाइन को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाए, ऑनलाइन एजुकेशन को, लेकिन उस ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उनके निराकरण की भी व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। और तीसरा कदम उन्होंने यही कहा कि विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में प्रवेश दिया जाना चाहिए, तो इससे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो भारत के भी जो संस्थान है फिर उस कॉम्पिटिशन में अपने स्तर में सुधार करेंगे। तो इस तरह से कुछ उपाय उन्होंने सुझाए हैं। तो मित्रों, ये मैं आर्टिकल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप ये आर्टिकल देख लेंगे और कोशिश कीजिए कि आप इस आर्टिकल को अपने पास सुरक्षित भी रखें और बीच बीच में दोहराते रहें। मित्रों, अब है ईमेल का अंतिम चरण। तो फ्रेंड्स, आप सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इसमें से एक मेल है अखंड प्रताप सिंह का, आगरा से। उन्होंने लिखा है कि वो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में बहुत लोगों को बताते हैं और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है, काफी लोग सुनने भी लगे हैं। तो अखंड प्रताप सिंह, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत एकेडमी की ओर से आभार भी कि आप एक नेक काम में लगे हुए हैं। तो मित्रों, मैं और कुछ दोस्तों के नाम ले रहा हूं। वह संदीप कुमार लखनऊ से, जिग्नेश सूरत गुजरात से, खेमराज जोधपुर से, मनप्रीत कौर बिलासपुर से, शालू पांडे बीएचयू से, स्कंद कुमार, साधना यादव लखनऊ से, मजहर अहमद खान झांसी से, विशाल हारमालकर थाने महाराष्ट्र से, अर्जुन सूर्यवंशम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, राजेंद्र पटेल मऊ मध्य प्रदेश से, विकास शर्मा, ऋचा शर्मा और उनके कई फ्रेंड्स और परिचित और फैमिली मेंबर्स हैं जो इसको इकट्ठे सुनते हैं, विवेक अग्रवाल जयपुर से, स्वाति गुप्ता झालवाड़ से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, सूरज राजपूत सहादा महाराष्ट्र से और मोहित मीना, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे पास बहुत से मेल आए हैं और जिसमें गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने अपना प्रणाम निवेदन किया है, बधाइयां भेजी हैं, उन सब के नाम शामिल करना संभव नहीं था, बहुत लंबी लिस्ट होती, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा कि मैं उनके नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन उन सभी अपने प्रिय शिष्यों को मैं यहां शब्द यूज करता हूं कि मैं बिल्कुल तहे दिल से बहुत ही आंतरिक भावनाओं के साथ गहराई में जाकर के धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उनकी बेहतरी के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। मित्रों, आप लोगों की यही भावनाएं हैं जो हम जैसे लोगों को ताकत देती हैं, ऊर्जा देती हैं और फिर उसी ताकत और ऊर्जा के दम पर हम लोग उठ खड़े होते हैं और चलने का साहस कर बैठते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।